प्रेमचंद साहित्य में दलित विमर्श। प्रेमचंद के दलित विमर्श को लेकर हिंदी लेखकों में काफ़ी विवाद है। प्रेमचंद के जीवन काल के दौरान भी उनके साहित्य को लेकर विवाद उठते रहे थे। उनके जीवन काल में ही उन्हें घृणा का प्रचारक, ब्राह्मण विरोधी, प्रचारवादी, विदेशी साहित्य का नकलची इत्यादि कहा गया। इस सारे दुष्प्रचार का जवाब प्रेमचंद ने तो अधिक नहीं दिया, लेकिन उनके प्रशंसक बालकृष्ण शर्मा नवीन ने कहा था कि प्रेमचंद के निंदक मर जाएंगे लेकिन प्रेमचंद जीवित रहेंगे। आज कौन पंडित ज्योति प्रसाद निर्मल या ठाकुर श्रीनाथ सिंह या ऐसे कुछ और लोगों का नाम जानता है जिन्होंने प्रेमचंद के जीवन काल में उन पर बहुत नीचे स्तर पर आक्रमण किए थे, लेकिन प्रेमचंद पर आक्रमणों का सिलसिला पूरी तरह खत्म कभी नहीं हुआ। प्रेमचंद के देहांत के 65-70 साल बाद उनके बहुचर्चित उपन्यास रंगभूमि को सर्वाधिक सार्वजनिक रूप से जलाया गया और उन्हें दलित विरोधी कहा गया। हाल में उन्हें सामंत का मुंशी और जार कर्म का दोषी करार दिया गया। कुछ वर्ष पूर्व उन्हें सुदखोर आदि उपाधियों से विभूषित किया गया था। इन सब आरोपों के बाद एक ओर प्रेमचंद को या तो साहित्य से खारिज करने की या उनका कद कम करने की कोशिश की जाती है, दूसरी ओर उन्हें बेहद गरीब बेचारा मास्टर लेकिन जनता का महान लेखक सितारा आदि के रूप में संकल्पित किया जाता है। 1980 में यदि उनकी जन्मशती पर नेहरू कार्यक्रम हुए तो 25 वर्ष बाद अब उनकी 125वीं जयंती पर देश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं। प्रेमचंद के प्रति लोगों दोनों ओर से यह अतिवादी दृष्टिकोण है। स्वयं प्रेमचंद को अपनी चटुकारिता पसंद न थी। कई जगह पर उन्होंने लिखा है कि उन्हें उपन्यास सम्राट आदि उपाधियों की जरा भी इच्छा नहीं है। इस तरह की उपाधियां देने का उन्होंने हमेशा जोरदार विरोध किया है और जीवन और साहित्य में वस्तुगत और संतुलित नजरिया अपनाने पर जोर दिया। प्रेमचंद ने अपने जीवन में संतुलित नजरिया अपनाने का भरसक प्रयत्न किया और उनका दलित विमर्श इसी संतुलित और वस्तुगत दृष्टिकोण का परिचायक है। किसी भी लेखक में किसी भी तरह के विमर्श को देखने समझने के लिए दो तीन आधार हैं। सबसे बड़ा और प्रमुख आधार है उसका लेखन, सृजनात्मक व चिंतन परक दोनों, लेकिन मुख्य तौर पर सृजनात्मक। दूसरा आधार है उसका अपना जीवन व्यवहार। जीवन व्यवहार के स्तर पर भारत के ही नहीं दुनिया के लेखकों के जीवन में भी अंतर्विरोध मिलेंगे। लेखकों में सोचने, लिखने और स्वयं अपने जीवन में उस सोच को अपनाने के स्तर पर अनेक अंतर्विरोध उभर आते हैं। लेखक के अपने जीवन और उसके लेखन के जीवन में जमीन आसमान का फर्क है। एक लेखक का जीवन लगभग 100 वर्ष में सिमट जाता है, लेकिन उसके लेखन का जीवन दशकों, सदियों व कई बार सहस्राब्दियों तक भी चल सकता है। और प्रेमचंद के लेखन का जीवन उनके व्यक्तिगत जीवन के प्रति तमाम तरह की प्रतिक्रियाओं के बावजूद काफ़ी दीर्घकालीन रहेगा। लेखक के व्यक्तिगत जीवन संबंधी प्रामाणिकता की तलाश उनके जीवन काल में ही अधिक सार्थक होती है। लेखक के देहांत के बाद उसके जीवन की घटनाओं पर प्रतिक्रियाएं एक हद तक निरर्थक प्रयास होते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा उनका महत्व एकेडमिक स्तर पर सीमित होता है। अब यदि प्रेमचंद पर जार कर्म के आरोप लगाए भी जाते तो दुनिया की कोई भी अदालत मृत व्यक्ति पर मुकदमा चलाने की इजाज़त नहीं देती, और जब तक किसी व्यक्ति पर लगे आरोपों को किसी न्यायिक अदालत द्वारा पुष्टि न कर दी जाए तब तक उन आरोपों का अपराधी उन्हें घोषित नहीं किया जा सकता। हाँ, लेखक का लेखन हमेशा पाठकों आलोचकों की कचहरी में पड़ताल के लिए उपलब्ध रहता है और वह एक ऐसी प्रमाणिक सामग्री है जिससे जीवित या मृत लेखक किसी भी तरह मुनकिर नहीं हो सकता। केवल उस सामग्री की व्याख्या से जीवित अवस्था में वह अपनी सहमति या असहमति व्यक्त कर सकता है। तो वस्तुगत स्तर पर प्रेमचंद के किसी भी विमर्श को उनके जीवन से नहीं उनके लेखन से व्याख्यात किया जाना जरूरी भी है और सही तथा तो वस्तुगत भी। उनके जीवन में बार बार झांकना कई बार अपने ही दृष्टि की सीमाओं को जग जाहिर करना सिद्ध हो जाता है। अतः प्रेमचंद का जीवन जैसा भी था और प्रायः वह अपने लेखन के काफ़ी हद तक अनुरूप ही था, उनके लेखन को ही उनके दलित विमर्श को समझने का आधार बनाया जाएगा। और जैसे उनके अपने जीवन में अंतर्विरोध थे, कुछ कुछ वैसा ही अंतर्विरोध उनके लेखन में भी नज़र आते हैं जिन पर इस आलेख में ध्यान आकर्षित किया जाएगा। प्रेमचंद ने करीब 3.5 दशक के अपने लेखन काल में विपुल मात्रा में साहित्य रचा है, जिसमें सृजनात्मक और चिंतन परक दोनों तरह का साहित्य शामिल है। उनके लेखन में करीब 15 उपन्यास, 250 के करीब कहानियां, 3 नाटक, कुछ बच्चों के लेखन के अतिरिक्त अनुवाद, अहंकार, गर्ल्स वर्दी के तीन नाटक फिसाना या आजाद कलेप्यंतरण के साथ साथ विविध प्रसंग के तीन खंड में 800 करीब लेख टिप्पणियां और समीक्षाएं तथा चिट्ठी पत्री के दो भाग में 560 के ऊपर पत्र शामिल हैं। दुलारे लाल भार्गव व कुछ अन्य व्यक्तियों से भी उनके पत्र मिल जाते तो यह संख्या 1000 का आंकड़ा पार कर जाती। प्रेमचंद के जीवन और लेखन पर ढेरों किताबें हिंदी और उर्दू में छप चुकी हैं व छप रही हैं, लेकिन उनका जीवन वृत्त जानने के लिए उनके अपने जीवन सार या मेरी पहली रचना के अलावा उनकी पत्नी शिवरानी देवी रचित प्रेमचंद के घर में, पुत्र अमृत राय रचित कलम का सिपाही व मदन गोपाल रचित कलम का मजदूर भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अमृत राय और मदन गोपाल ने लगभग साथ ही साथ प्रेमचंद की जीवनी लिखी और दोनों ही जीवनियों में विवरण का अद्भुत साम्य मिलता है, लेकिन मदन गोपाल के जीवनी में श्रद्धा कम, तथ्यों और घटनाओं का विवरण अधिक वस्तुगत है। प्रेमचंद के इस विपुल साहित्य में से उनके सृजनात्मक साहित्य में अभिव्यक्त दलित विमर्श से ही हिंदी में अधिकांश विवाद पैदा हुए हैं। जैसे उनकी कहानी कफन पर दलित विरोधी होने का आरोप लगने से कहीं पहले हंसराज रहबर ने इस पर प्रगतिवाद विरोधी कहानी का आरोप लगा दिया था। दलित साहित्य पर पिछले एक दशक से शुरू हुई चर्चा में कफन को दलित विरोधी कहानी कहा गया। रंगभूमि में उपन्यास भी उसके छपने से लेकर भारतीय दलित साहित्य अकादमी द्वारा 2004 में सार्वजनिक रूप से उसकी प्रतियां जलाए जाने तक प्रायः प्रशंसा ही हुई है। प्रेमचंद के जीवन काल में तो रंगभूमि को ही प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता रहा, गोदान से भी बढ़कर। प्रेमचंद के देहांत के बाद गोदान को उनकी ही नहीं हिंदी की सर्वश्रेष्ठ औपन्यासिक रचना माना गया। साथ ही कर्मभूमि, प्रेमाश्रम और सेवा सदन भी अन्य उपन्यासों की अपेक्षा अधिक चर्चा में रहे। रंगभूमि की प्रशंसा में उसके साहित्यिक गुणों के साथ साथ पहली बार एक दलित को उपन्यास का नायक बनाने को भी सराहनीय समझा गया। लेकिन उपन्यास छपने के करीब 80 वर्ष बाद दलित नायकत्व स्थापित करने वाले उपन्यास को इस आधार पर दलित विरोधी कहा गया कि उसमें सूरदास का उल्लेख जातिवाचक नाम के साथ किया गया है और इसे हाल में बने उस कानून का उल्लंघन बताया गया जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को अपमानित करने के लिए उसकी जाति का उल्लेख नहीं किया जा सकता। इस कानून का संदर्भ उच्च जाति से संबंधित उन वर्चस्ववादी वर्गों जैसे जमींदार, कारखानेदार, बड़े अफसर आदि का है जो अपने यहाँ काम करने वाले मजदूर या मातहतों को उनकी जाति का नाम लेकर अपमानित करते हैं, जिनका बड़ा मार्मिक वर्णन प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन में मिलता है। लेकिन रंगभूमि के किसी भी पाठक या आलोचक को उसमें प्रेमचंद द्वारा अपने किसी पात्र को ऐसे नजरिए से पेश करने की गवाही नहीं मिल सकती। रंगभूमि के नायक सूरदास जाति चमार होने का स्पष्ट उल्लेख करके भी प्रेमचंद ने उसे इतना सम्माननीय पात्र बनाया है कि तथाकथित ऊंची जातियों के लोग उसकी कुर्बानी के सामने बौने नजर आते हैं और उसकी कीर्ति से इस्तेहा करते हैं। इसी प्रकार प्रेमचंद के सर्वश्रेष्ठ उपन्यास गोदान में बहुचर्चित सीरिया माता दीन प्रसंग में भी जिस आक्रामक ढंग से माता दीन के मुंह में हड्डी डालकर उसे चमार बनाया जाता है और कैसे पंडित दाता दीन को चमारनी स्त्री सीलिया को उसके पुत्र द्वारा भोग्या समझे जाने पर दंडित किया जाता है, इससे भी प्रेमचंद का अक्स दलित विरोधी का न होकर काफी सशक्त दलित समर्थक का ही उभरता है। उपन्यास की अन्य प्रमुख पात्र कुर्मी स्त्री धनिया का किरदार में प्रेमचंद्र ने ऐसी प्रखर और जागरूक स्त्री के रूप में चित्रित किया है कि उपन्यास के सभी पुरुष पात्र उसके सामने छोटे लगने लगते हैं। कर्मभूमि उपन्यास में तो प्रेमचंद ने दलितों के लिए अत्यंत संवेदनशील मुद्दे मंदिर प्रवेश की समस्या नहीं उठाई बल्कि दलित कर्म के संगठित होकर संघर्ष करने का भी विस्तार से चित्रण किया। कर्मभूमि में दलित समस्याओं व संघर्षों का चित्रण व्यापक रूप में किया गया है। प्रेमाश्रम में अछूतों से बेगार लिए जाने व किसानों द्वारा भी उनसे अच्छा व्यवहार न किए जाने का चित्रण हुआ है। कायाकल्प में भी दलितों द्वारा बेगार करवाए जाने की प्रथा के विरोध के स्वर मुखरित हुए हैं। कायाकल्प में प्रेमचंद पहली बार चमारों के लिए मजदूर शब्द का भी प्रयोग करते हैं। गबन उपन्यास में प्रेमचंद्र ने देवी दीन खटीक के पात्र के रूप में राष्ट्रीय आंदोलन में दलितों के योगदान को रेखांकित किया है। गबन के दलित पात्र अपने को निम्न जाति ने समझकर अपनी जाति का गौरव का भी परिचय देते हैं। इस आलेख में प्रेमचंद के चिंतन परक लेखन में दलित विमर्श पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है, लेकिन उनके कथा साहित्य पर संक्षेप में इसलिए विचार किया गया है कि प्रेमचंद के दलित विमर्श संबंधी अभी तक उनके सृजनात्मक साहित्य के केंद्र में रखकर ही चर्चा अधिक हुई है। उपन्यासों के अतिरिक्त दलित जीवन को मार्मिक रूप में चित्रित करने वाली प्रेमचंद की करीब 50 कहानियों में से सर्वाधिक चर्चित कहानियां हैं सदगति, ठाकुर का कुआं, मंदिर, मंत्र, घास वाली, सवासर गेहूं, शूद्र, कफन, देवी आदि। कफन को यदि दलित विरोधी या प्रगतिवाद विरोधी कहा गया, लेकिन कहानी के वस्तुगत ढंग से अध्ययन में ऐसी कोई लेखकीय भावना नजर नहीं आती। कफन कहानी में बल्कि एक रूपक के जरिए वर्चस्ववादी या शोषक वर्गों द्वारा गरीब व दलित वर्गों के क्रूर शोषण का वर्णन कथित निठल्ले पात्रों द्वारा करवाया गया है। ऐसे पात्र गोर्की व लुशून की कहानियों में भी मिलते हैं, और वहां भी गोर्की व लुशून के लेख की संवेदना अपने ऐसे ही चोर या निठल्ले पात्रों से ही जुड़ी होती है। सृजनात्मक साहित्य में दलित पात्रों के चित्रण के साथ साथ प्रेमचंद्र ने जमाना, मर्यादा, माधुरी, हंस और जागरण आदि पत्र पत्रिकाओं में समय समय पर संपादकीय या अन्य लेख व टिप्पणियों के रूप में भारतीय समाज में व्याप्त दलित समस्या पर गंभीरता से चिंतन किया है। 1933 में हंस के एक अंक के मुख्य पृष्ठ पर प्रेमचंद्र ने डॉक्टर अंबेडकर का चित्र भी छापा, जो इन दिनों काफी बड़ी बात थी। विविध प्रसंग के तीन खंडों में से दूसरे खंड में छूत अछूत शीर्षक से प्रेमचंद्र के 27 लेख या टिप्पणियां संकलित हैं। इसी खंड में राष्ट्रीय रंगमंच स्वाधीनता संग्राम शीर्षक से संकलित लेखों में छुतपन मिटता जा रहा है में भी प्रेमचंद्र का दलित विमर्श अभिव्यक्त हुआ है। एक खंड में पुराना जमाना, नया जमाना तथा खंड तीन में जीवन और साहित्य में घृणा का स्थान, जाति भेद मिटाने की एक योजना, हिंदू समाज के विभत्स दृश्य में भी प्रेमचंद का दलित विषय चिंतन उभर कर सामने आया है। प्रेमचंद के चिंतन परक इन 30 से अधिक लेखों टिप्पणियों द्वारा प्रेमचंद का दलित चिंतन में स्पष्ट देखा जा सकेगा। साथ इस बात को भी देखा जा सकेगा कि प्रेमचंद के कथा साहित्य में दलित जीवन या पात्रों का जैसा चित्रण हुआ है वह उनके इन लेखों के चिंतन का भी प्रतिरूप है या उससे कुछ अलग है। फरवरी 1919 के जमाना में प्रकाशित पुराना जमाना नया जमाना लेख में प्रेमचंद्र ने दलित समस्या की ओर प्रत्यक्ष ध्यान तो नहीं दिलाया है, लेकिन रूस के अक्टूबर 1917 की क्रांति की प्रशंसा करके किसान मजदूरों की दशा की ओर ध्यान दिलाकर अपने चिंतन के जनतांत्रिक तत्व को अवश्य रेखांकित कर दिया। एनोटेड कामा, क्या यह शर्म की बात नहीं है कि जिस देश में 90% आबादी किसानों की हो, उस देश में कोई किसान सभा, कोई किसान की भलाई का आंदोलन, कोई खेती का विद्यालय किसानों की भलाई का कोई व्यवस्थित प्रयत्न न हो। आने वाला जमाना अब किसानों और मजदूरों का है। दुनिया की रफ्तार इसका साफ सबूत दे रही है। हिंदुस्तान इस हवा से बेअसर नहीं रह सकता। यूनाइटेड कामाबंद, विविध प्रसंग, भाग एक, पृष्ठ संख्या 268, 1962 संस्करण। विविध प्रसंग भाग तीन में संकलित प्रेमचंद के बहुचर्चित निबंध जीवन और साहित्य में घृणा का स्थान में 1933 में लिखा कि उन पर उनकी रचनाओं में ब्राह्मणों के प्रति घृणा के प्रचार का आरोप है। इस आरोप को नकारते हुए प्रेमचंद ने स्पष्ट किया कि नवीन साहित्य समाज का खून चूसने वालों, रंगेसियारों, हथकंडेबाजों और जनता के अज्ञान से अपना स्वार्थ सिद्ध करने वालों के विरुद्ध उतने ही जोर से आवाज उठा रहा है और दीनों, दलितों, अन्याय के हाथ सताए हुए के प्रति उतनी ही जोर से सहानुभूति उत्पन्न करने का प्रयत्न कर रहा है। प्रेमचंद की दलित वर्ग के प्रति चिंता वास्तव में जनतांत्रिक विचारों से उद्भूत है। फरवरी 1934 में लिखी टिप्पणी जाति भेद मिटाने की एक योजना में भी प्रेमचंद बड़े व्यंग से पूछते हैं। एनोटेड कामा, क्या पहले कायस्थ या ब्राह्मण या वैश्य हैं, पीछे आदमी? किसी से मिलते ही एक पहला सवाल यही करते हैं कि आप कौन साहब हैं। ग्रामीणों में भी यही प्रश्न पूछा जाता है, कौन ठाकुर? और हम कितने गर्व से अपने को शर्मा, वर्मा, तिवारी, चतुर्वेदी लिखते हैं कि क्या पूछना। ये इसके सिवा क्या है कि भेदभाव हमारे रक्त में सन गया है और हम में जो पक्के राष्ट्रवादी हैं वे भी अपनी सांप्रदायिकता का बिगुल बजाकर फूले नहीं समाते। वरना उसकी जरूरत ही क्या है कि हम अपने को चतुर्वेदी या त्रिवेदी कहें, खासकर उस दशा में कि हमने वेद की सूरत भी नहीं देखी और इससे भी संदेह कि हमारे पूर्वजों ने भी कभी इसके दर्शन किए थे। इनोटेड कामबंद, विविध प्रसंग के इसी खंड में प्रेमचंद ने तीन भागों में लेख श्रृंखला लिखी। हिंदू समाज के विभत्स दृश्य मार्च अप्रैल 1934 में लिखी इस श्रृंखला के पहले भाग में हिंदू समाज में लाश की कैसी दुर्गति की जाती है इस पर विस्तार से चर्चा की है। दूसरे भाग में अंधविश्वासों की, जिसके चलते तीर्थस्थान, ठगों के अड्डे और पाखंडियों के अखाड़े बन गए हैं। और तीसरे भाग में मंदिरों की भीतरी दुर्दशा के चित्र खींचे गए हैं। जितनी तीखी भाषा में प्रेमचंद्र ने इस कटु यथार्थ को अभिव्यक्त किया है वैसा किसी दलित पृष्ठभूमि के लेखक ने भी नहीं किया होगा। ये नोटेड कामा। इन मंदिरों की आड़ में आज बड़े बड़े लज्जाजनक कृत्य हो रहे हैं। पुजारियों का, महंतों का, धर्मगुरुओं का जीवन भयानक विलासिता से भरा हुआ है। वे मंदिरों की आड़ में जघन्य से जघन्य कर्म करते नहीं शर्माते। ईश्वर को गाना सुनाकर खुश रखने के लिए उन्हें वेश्याएं चाहिए। इस बहाने वे अपनी राक्षसी कामना को पूरा करते हैं और अपने जीवन को विलास, वासना और पतन के गहरे गड्ढे में डाल देते हैं। जिस पर भी हिंदू समाज के लिए वे पूज्य हैं, मानवीय हैं और देवता तुल्य हैं, क्योंकि वे पुजारी हैं, महंत हैं और धर्मगुरु हैं। इन नोटेड काम बंद। विविध प्रसंग खंड दो में दलित प्रश्न पर अधिक विचार मिलते हैं और ये विचार गांधी और गांधीवाद से प्रभावित है। मई 1932 की छोटी सी टिप्पणी अछूतपन मिटता जा रहा है में प्रेमचंद ने कहा, इनोटेड कामा, जाति के बंधन इन कल कारखानों के युग में बहुत दिन तक नहीं रह सकते। महात्मा गांधी अछूतों की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस काम में उन्हें कितने सज्जनों का सहयोग मिल रहा है। आधी कठिनाई इसलिए बढ़ गई है कि अछूत स्वयं अपने को नीच समझता है और ऊंची जातियों से दूर रहना ही अपना धर्म समझता है। इनोटेड कामा बंद। इस टिप्पणी की पहली पंक्ति सैद्धांतिक रूप से सही है, लेकिन कल कारखाने लगने के सौ से ज्यादा साल बाद तक अभी व्यवहारिक रूप से सही सिद्ध नहीं हो पाई है। अंत में अछूतों द्वारा स्वयं को नीचा समझने की वृत्ति जो ब्राह्मण वर्ग ने मनुस्मृति आदि ग्रंथों द्वारा उसके दिमाग में कूट कूट कर भरी है, उस विषैली व खुद की दुश्मन वृत्ति से अब वे मुक्त हो रहे हैं और इससे मुक्त होने में भूमिका गांधीवाद या गांधी की न होकर डॉक्टर अम्बेडकर व उनके चिंतन की है, जिससे प्रेमचंद अभी कुछ दूर ही थे। छूत अछूत शीर्षक से संकलित 27 लेख भी 1932-34 के बीच ही लिखे गए हैं। वास्तव में इन लेखों से प्रेमचंद का दलित विमर्श अधिक साफ तरीके से उभरा है। छूत अछूत शीर्षक से पहला लेख महान तप है, जिसमें महात्मा गांधी द्वारा दिसंबर 1932 में यरवदा जेल में दलितों के लिए पृथक निर्वाचन के विरोध में भूख हड़ताल शुरू किए जाने का संदर्भ है। 19 दिसंबर 1932 को छपे इस लेख में महात्मा गांधी के प्रति प्रेमचंद की श्रद्धा झलक पड़ती है। धन्य हो महात्मा, राष्ट्र की सेवा में तुम पहले ही अपना सर्वस्व अर्पण कर चुके थे। एक प्राण रह गया है, उसे भी राष्ट्र को ही भेंट करने जा रहे हो। ये नोट गांव बंद। हम स्वीकार करते हैं कि शूद्रों के साथ हमने अन्याय किया है। हमने उन्हें जी भर कर रौंदा, कुचला, दला। इस अन्याय ने जिस हृदय को सबसे ज्यादा दुखी किया है वह उसी तपस्वी का हृदय है जिसने अपना जीवन दलित भाइयों की सेवा में ही व्यतीत किया है। प्रेमचंद के इस लेख में पूरी तौर पर गांधी के विचारों का समर्थन करते हैं और दलित वर्ग या समुदाय को हिंदू समाज का ही अंग मानते हैं। उनके देवता वही हैं जो अब सब हिंदुओं के हैं। आदर्श वही हैं, दृष्टिकोण भी वही हैं। हिंदुत्व तो उनके अणु अणु में भरा हुआ है। 26 सितंबर 1932 को प्रकाशित अपने लेख हमारा कर्तव्य में प्रेमचंद सम्मिलित निर्वाचन संबंधी गांधी अम्बेडकर समझौते का स्वागत करते हैं। वह गांधी जी के 7 दिन के उपवास से हासिल इस समझौते को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बताते हुए ब्रिटिश राजनीतिज्ञों द्वारा महान कौटिल्य के सीमेंट से तैयार उस दीवार को ध्वस्त करना बताते हैं जो हिंदू अछूतों को अलग रखने के लिए बनाई गई थी। इस लेख में वे अपने पाठकों को गांधी का यह वचन भी याद दिलाते हैं, अस्पृश्यता या छुआछूत अगर हिंदू धर्म में हो तो मुझे कहना पड़ेगा कि उसमें शैतानियत भरी हुई है, धर्म नहीं। पर मेरा दृढ़ विश्वास है कि हिंदू धर्म में यह सब कुछ नहीं है। इन दोनों लेखों से स्पष्ट है कि दलित संबंधी चिंतन में प्रेमचंद डॉक्टर अम्बेडकर से अधिक महात्मा गांधी से प्रभावित थे। 14 नवंबर 1932 को हरिजनों के मंदिर प्रवेश का प्रश्न विषय पर प्रेमचंद चिंता व्यक्त करते हैं कि उस समय के इस सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का हल यदि जल्द न किया गया तो महात्मा जी फिर अनशन शुरू कर दें। 21 नवंबर 1932 को इसी विषय पर प्रकाशित अपने लेख में प्रेमचंद ने बनारस के तथाकथित वर्णाश्रम स्वराज संघ के अछूतों के मंदिर प्रवेश के विरोध के आंदोलन की जमकर खबर ली है, जिसके फीटन आरोही मारतंडों में एक पुरी के श्री 108 शंकराचार्य भी थे। इस लेख में हिंदू धर्म नेताओं में व्याप्त पाखंड की प्रेमचंद्र ने धज्जियां उड़ाई है। अछूत के पैसे तो आप बेधड़क ले लेते हैं, अछूत कोई मंदिर बनावे आप दलबल के साथ जाएंगे, मंदिर में देवता की स्थापना करेंगे, तरमाल खाएंगे, हाँ अछूत ने उसे छुआ न हो, दक्षिणा लेंगे, इसमें कोई हर्ज नहीं, न होना चाहिए, लेकिन अछूत मंदिर में नहीं जा सकता, उससे देवता पवित्र तो हो जाएंगे। पाखंडी ब्राह्मणों की खबर लेते हुए प्रेमचंद्र ने इसी लेख में आगे लिखा, इसी काशी में हजारों मत सेवी ब्राह्मण वह भी तिलकधारी निकल आएंगे, फिर भी वे ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों के घर में चमारियां हैं, फिर भी उनके ब्राह्मणत्व में बाधा नहीं आती। किंतु अछूत नित्य स्नान करता हो, कितना ही आचारवान हो, वह मंदिर में नहीं जा सकता। क्या इसी नीति पर हिंदू धर्म स्थिर रह सकता है? इन्हीं वर्षों में डॉक्टर अम्बेडकर ने घोषणा की थी, उनका जन्म तो उनके वश में नहीं था, लेकिन वे एक हिंदू के रूप में कभी नहीं मरेंगे। मृत्यु से दो महीने पहले से ही कम समय पहले, लेकिन इस घोषणा के 20 वर्ष बाद 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर अम्बेडकर ने अकेले ने अपने लाखों श्रद्धालुओं के साथ हिंदू धर्म का त्याग करके बौद्ध धर्म में दीक्षा ली। डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू धर्म में सुधार का 20 वर्ष का इंतजार किया, लेकिन देश की आज़ादी के 10 वर्ष बाद तक भी जब हिंदू धर्म में सुधार होता उन्हें नजर नहीं आया, और अपनी सन्निकट मृत्यु के दरपेश उन्होंने अपना सार्वजनिक रूप से दिया वचन निभाया और भारत के दलित वर्ग के सामने भी नया पथ खोला। दुर्भाग्य से जिस पद पर डॉक्टर अम्बेडकर ने के नाम लेवा दलित नेता भी नहीं चले। 5 दिसंबर 1932 को प्रकाशित 2.5 पंक्तियों की टिप्पणी में प्रेमचंद्र ने नागपुर में हरिजन बालकों के लिए अलग छात्रावास बनाने का विरोध किया, क्योंकि इससे अछूत पर मिटेगा नहीं और दृढ़ होगा। इस नीति पर जो अब भी भारत सरकार भी चल रही है। 30 जनवरी 1933 को मंदिर प्रवेश पर वायसराय के रुख की आलोचना करते हुए प्रेमचंद्र ने लिखा कि मद्रास काउंसिल में श्रीयुक्त सुब्रायन को मंदिर प्रवेशाधिकारी संबंधी बिल पेश करने का अधिकार नहीं दिया। जाहिर है कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद भारत में फूट डालो राज करो नीति के तहत दलित समस्या का भी लाभ उठा रहा था। असेंबलियों में दलित पृथक निर्वाचन क्यों चाहते थे, इसका एक उदाहरण तो प्रेमचंद ने अपनी 10 अप्रैल 1933 को प्रकाशित टिप्पणी में स्वयं ही दे दिया है। महात्मा गांधी के अनशन के दबाव के नीचे डॉक्टर अम्बेडकर ने सम्मिलित निर्वाचन स्वीकार कर लिया, लेकिन बंबई कॉरपोरेशन के चुनाव में एक हरिजन श्री देवरुखकर को समर्ण हिंदुओं ने जैसे हराया, उससे प्रेमचंद को तो ठेस पहुंची, लेकिन उन्होंने यह स्वीकार नहीं किया कि पृथक निर्वाचन की बात सही थी। हालांकि उन्होंने इस टिप्पणी के अंत में चेतावनी जरूर दे दी, अगर सजातीय हिंदू इस तरह हरिजन उम्मीदवारों को हतोत्साहित करते रहे तो आपस में वैमनस्य और असंतोष बढ़ेगा और पूना के समझौते का जो उद्देश्य था यह गायब हो जाएगा। हरिजनों या दलितों के मंदिर प्रवेश का अधिकार और आंदोलन को लेकर प्रेमचंद ने इस बीच कई लेख लिखे। इसके अलावा 8 जनवरी 1934 के एक लंबा लेख क्या हम वास्तव में राष्ट्रवादी हैं, उपशीर्षक टके पंथ पुजारी पुरोहित और फंडे हिंदू जाति के कलंक है लिखा। इस लेख में प्रेमचंद ने सांप्रदायिकता और जातिवाद को राष्ट्रवाद के घोर विरोधी बताते हुए लिखा, हिंदू जाति का सबसे घृणित क्रोध, सबसे लज्जाजनक कलंक यदि टकेपंथी दल है जो एक विशाल जोंक की भांति उसका खून चूस रहा है, और हमारे राष्ट्रीयता के मार्ग में यही सबसे बड़ी बाधा है। राष्ट्रीयता की पहली शर्त है समाज में साम्य भाव का दृढ़ होना, उसके बिना राष्ट्रीयता की कल्पना नहीं की जा सकती। राष्ट्रीयता की अपनी अवधारणा की कुछ और व्याख्या करते हुए प्रेमचंद इसी लेख में आगे कहते हैं, हम जिस भारतीयता का स्वप्न देख रहे हैं उसमें तो जन्मगत वर्णों की गंध तक न होगी। वह हमारे श्रमिकों और किसानों का साम्राज्य होगा जिसमें न कोई ब्राह्मण होगा, न हरिजन, न कायस्थ, न क्षत्रिय। उसमें सभी भारतवासी होंगे, सभी ब्राह्मण होंगे या सभी हरिजन होंगे। इस लेख में प्रेमचंद ने पंडित ज्योति प्रसाद निर्मल द्वारा अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का ही उत्तर दिया है। निर्मल जी हमें ब्राह्मण द्वेषी बताकर संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने हमें हिंदू द्रोही भी सिद्ध किया है, क्योंकि हमने अपनी रचनाओं में मुसलमानों को अच्छे रूप में दिखाया है। तो क्या आप चाहते हैं कि हम मुसलमानों को भी उसी तरह चित्रित करें जिस तरह पुरोहितों और पाखंडियों को करते हैं? हमारा आदर्श सदैव से यह रहा है कि जहां धूर्तता और पाखंड और सबलों द्वारा निर्बलों पर अत्याचार देखो उसको समाज के सामने रखो, चाहे हिंदू हो, पांडव हो, पंडित हो, बाबू हो, मुसलमान हो या कोई और। इसलिए हमारी कहानियों में आपको पदाधिकारी, महाजन, वकील और पुजारी गरीबों का खून चूसते हुए मिलेंगे, और गरीब किसान, मजदूर, अछूत और दरिद्र उनके आघात सहकर भी अपने धर्म और मनुष्यता को हाथ से न जाने देंगे, क्योंकि हमने उन्हीं में सबसे ज्यादा सच्चाई और सेवा भाव पाया है। लेख के अंत में प्रेमचंद एक बार फिर इस बात पर जोर देते हैं कि राष्ट्रीयता की पहली शर्त वर्ण व्यवस्था, ऊंच नीच के भेद और धार्मिक पाखंड की जड़ खोदना है। 8 जनवरी 1934 में प्रकाशित प्रेमचंद का यह लेख उनके दलित विमर्श पर भविष्य की भारतीय समाज व्यवस्था की अवधारणा को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वास्तव में इस लेख में दलित समस्या संबंधी प्रेमचंद के विचार महात्मा गांधी के विचार से आगे बढ़े हुए दिखाई देते हैं। विशेषतः भारतीय समाज व्यवस्था के नए संभावित रूप का उनका स्वप्न प्रगतिशील विचारों व वर्ग दृष्टि की झलक देता है। छूत अछूत शीर्षक से लेखमाला की अंतिम टिप्पणी 14 मई 1934 को प्रकाशित है, जो एक साथ कटु और मार्मिक दोनों है। शीर्षक है, इस हिमाकत की कोई हद है। शुरू का वाक्य है, छुआछूत और जात पात का भेद हिंदू समाज में इतना बदमूल हो गया है कि उसका सर्वनाश करके ही छोड़े। यह टिप्पणी, पूरी टिप्पणी यहाँ प्रेमचंद के शब्दों में ही दर्ज है। खबर है कि किसी स्थान में एक कुलीन हिंदू स्त्री कुएं पर पानी भरने गई, संयोगवश कुएं में गिर पड़ी। बहुत से लोग तुरंत कुएं पर जमा हो गए और उस औरत को बाहर निकालने का उपाय सोचने लगे, मगर किसी में इतना साहस नहीं था कि कुएं में उतर जाता। वहां कई हरिजन भी जमा हो गए थे, वे कुएं में जाकर उस स्त्री को निकाल लाने को तैयार हुए, लेकिन हरिजन कुएं में कैसे जा सकता था, पानी अपवित्र हो जाता। नतीजा यह हुआ कि अभागनी स्त्री कुएं में मर गई। प्रेमचंद का निष्कर्ष वाक्य है, क्या छूत का भूत कभी हमारे सिर से न उतरेगा। वास्तव में प्रेमचंद के विचारों में गांधीवाद से मोहभंग 1934 के आसपास से ही होना शुरू हुआ था और 1936 में तो पूरी तरह से उनसे मुक्त हो गए थे। उसका सबसे बड़ा कारण प्रेमचंद का भारतीय साहित्य परिषद को हंस सौंपने और उनसे निराश होकर वापस लेने में नहीं थे, जिसके तुरंत बाद वे गंभीर रूप से बीमार पड़े और उन्हें अपने जीवन की स्पष्ट अभिव्यक्ति का अवसर नहीं मिल पाया। थोड़ी बहुत अभिव्यक्ति केवल अधूरे उपन्यास मंगलसूत्र में ही कर पाए। इस प्रसंग को मदन गोपाल ने प्रेमचंद की अपनी जीवनी कलम का मजदूर में संक्षेप में दर्ज किया है। जयेंद्र कुमार के सुझाव पर 1935 में भारतीय साहित्य परिषद ने हंस को अपना मुखपत्र बनाने का प्रस्ताव किया, जिसमें सभी भाषाओं के साहित्य का हिंदी अनुवाद छपना था। प्रेस हो रहे लगातार घाटे के कारण प्रेमचंद ने सोचा था कि परिषद हंस को उनके ही प्रेस में छपवाती रहेगी, लेकिन परिषद ने उसे सस्ता साहित्य मंडल प्रेस दिल्ली से छपवाने का निर्णय लिया। हंस के संपादक के रूप में प्रेमचंद के साथ कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी का नाम जुड़ा। अक्टूबर 1935 से हंस नए रूप में निकला। हंस के 22 सदस्य सलाहकार मंडल में पहला नाम महात्मा गांधी का था। भारतीय साहित्य परिषद की कार्यकारिणी के सभापति भी महात्मा गांधी ही थे। इधर प्रेमचंद जून 1936 में घातक रूप से बीमार पड़े और जून और जुलाई 1936 के हंस में सेठ गोविंद दास के नाटक स्वतंत्र सिद्धांत के प्रकाशन पर अंग्रेज सरकार ने 1000 रुपये की जमानत मांग ली। भारतीय साहित्य परिषद ने इतने बड़े बड़े व्यक्तियों के कार्यकारिणी में होते हुए, जिनके रहते किसी तरह भी पैसे कमी न हो सकती थी, हंस की जमानत राशि जमा करने से इनकार कर दिया। 12/8/1936 को हंस की जमानत राशि न भर पाने से हंस का प्रकाशन बंद करने की घोषणा प्रेमचंद के ही नाम से की तथा साथ ही भारतीय साहित्य परिषद से हंस के संबंध विच्छेद की भी, जिसके लिए उन्होंने सस्ता साहित्य मंडल दिल्ली का पता परिषद के साथ पत्र व्यवहार के लिए दिया। पहले से ही गंभीर रूप से बीमार प्रेमचंद के लिए भयानक आघात था। बिना उनसे पूछे उनके नाम से यह घोषणा की गई। उनके परिवार और मित्रों ने प्रेमचंद की रुग्ण दशा और हंस के प्रति प्रेमचंद के लगाव को देखते हुए यह जमानत राशि जमा करवाई। हंस को प्रेमचंद अपना तीसरा पुत्र मानते थे। जीवन में गांधीवादियों के प्रेमचंद के साथ इस अमानुषिक कृत्य से ने वास्तव में प्रेमचंद को निर्णायक रूप से गांधी और गांधीवाद से अलग किया। सितंबर में हंस को दोबारा निकालते हुए इसे प्रगतिशील, अंतरप्रांतीय और अंतर्राष्ट्रीय रूप देते हुए आलोचनात्मक, उन्नतिमूलक और विवेक प्रणीत साहित्य का पूर्ण समर्थक और संदेशवाहक बनाया गया। जयनेन्द्र कुमार और श्री भारती को प्रेमचंद के अतिरिक्त संपादक बनाया गया। हंस के सी अंक में महाजनी सभ्यता लेख छपा, जो उनके चिंतन में प्रगतिशील दिशा में निर्णायक मोड़ का प्रतिबिंब है। दो बहने कहानी में भी इन विचारों को झलक मिलती है, लेकिन प्रेमचंद के चिंतन में यह निर्णायक मोड़ उस घड़ी व उन इस परिस्थितियों में आया जब वे मृत्युशैया पर थे। हंस का अक्टूबर 1936 का अंक शायद उनके जीवन काल में निकल नहीं पाया, लेकिन प्रेमचंद ने मृत्युशैया पर लेटे हुए भी भारतीय साहित्य परिषद द्वारा 12/8/1936 को जो क्रूरता उनके साथ की गई, उसका हिसाब सितंबर अंक में चुकता करके ही संसार से विदा ली। जीवन के अंतिम क्षणों में उन्हें ऐसे आघात न लगते तो शायद वे कुछ और समय जी जाते और अपनी वैचारिक प्रखरता व प्रतिबद्धता को और स्पष्ट रूप में अभिव्यक्त कर जाते। कुल मिलाकर प्रेमचंद का जीवन, व्यक्तित्व व चिंतन एक निरंतर संघर्ष की गाथा है, जो गुण के स्तर पर उच्च से उच्चतर की ओर गया है। उनके चिंतन और लेखन का मूल तत्व मानवतावाद और विवेकशील जनतांत्रिक भावना थी। उनके सृजनात्मक लेखन में दलित विमर्श इतना प्रखर है कि उनकी जाति संबंधी जानकारी न हो तो उसे किसी दलित पृष्ठभूमि के लेखक की रचना भी समझा जा सकता है। उनके चिंतन परक लेख में व्यक्त दलित विमर्श गांधीवाद से प्रभावित है, लेकिन वह इन सीमाओं के पार छलांग लगाने की चेष्टाएं करता रहता है। मृत्युशैया पर हंस के क्रूर और कटु अनुभव के बाद उनकी चेतना का जो स्वरूप विकसित हो रहा था, हिंदी और अन्य भाषी पाठक उससे वंचित रह गए। लेकिन उसका अंतिम स्वरूप निश्चय ही उच्चतर मानववादी या भगत सिंह के विकसित हो रहे समाजवादी चिंतन जैसा ही होता। जाहिर है कि उससे उनका दृढ़ विमर्श भी और अधिक प्रखर व निखरा हुआ होता।